ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप इसका पहला अध्याय है और पहला ही श्लोक लेंगे आज। तो अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आप सबको जो भगवद्गीता के अध्याय हैं वो याद है सबके सब? किसको सभी अध्याय याद है? हाथ खड़ा करो। मतलब सभी अध्यायों के नाम, जैसे इस अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, ऐसे सभी अध्यायों के नाम किसको याद है? हाँ, किसी को याद नहीं है? याद है? बोल रहे, बोलिए। लेकिन आप उस तरह से बोलिए जो प्रभुपाद जी ने जैसे बताया है। प्रभुपाद जी की भगवद गीता आप पढ़ते हैं और दूसरी भगवद गीता पढ़ते हैं आप? हाँ, प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़िए। प्रभुपाद जी ने जो अध्यायों के नाम दिए हैं वो दूसरे तरह से दिए हैं, आप समझ रहे हैं? यही है असली भगवद गीता। इसमें हमें भेद करना आना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद जी भगवद गीता के शुरू शुरू में लिख रहे हैं, भूमिका जब लिख रहे हैं, मंगलाचरण किया तो उससे पहले खुद लिख रहे हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। देखिए, भगवद गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। यह वैदिक ज्ञान का सार है और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। निसंदेह भगवद गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त हैं। बच्चों का कुछ करना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो सबको डिस्टर्ब करेंगे बच्चे, है ना? क्योंकि उनको तो समझ नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं। तो बच्चों को संभालना पड़ेगा प्लीज। अतएव यह प्रश्न किया जा सकता है कि एक अन्य भाष्य की क्या आवश्यकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का प्रयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। हाल ही में एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवद गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवद गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण प्राप्त हैं, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, कौन कह रहे हैं? श्री प्रभुपाद जी खुद कह रहे हैं, जहां तक मैंने देखा है केवल अमेरिका ही नहीं अपितु भारत में भी कठिनाई से कोई प्रामाणिक संस्करण मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवद गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। आई समझ में बात आपको? तो इसलिए ये भगवद गीता का नाम है भगवद गीता यथारूप, और इसी भगवद गीता को पढ़कर सारी दुनिया में लोग कृष्ण भक्त बने हैं, है ना? भगवद गीता तो बहुत 5000 वर्ष पहले बोली, और भगवद गीता में आप जब पिक्चर हॉल में जाते हो तो बच्चे शोर करते हैं तो वो कुछ कहते नहीं आपको आसपास के लोग? पिक्चर देखने जाते हो नहीं है? शोर करने देते हैं वो? वहां नहीं हम बच्चों को शोर करने देते क्योंकि वहां पे वो होगा। तो तो यहां तो उससे भी बहुत ज्यादा सीरियस बात है, बहुत गंभीरता से आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी इसका फल मिलेगा भगवद गीता का। तो ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपको शांत वातावरण बनाना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि यही एक भगवद गीता जो है जो ऑथेंटिक है और उसका परिणाम है, यही भगवद गीता जो है सारे संसार में कृष्ण भक्त बना रही है, बाकी वाली नहीं। जो आप जैसे बोल रहे थे, आपने इस भगवद गीता से तो नहीं बोले ना, है कौन से भगवद गीता से बोले है? प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति विनोद ठाकुर हैं, गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति उनके प्रभुपाद जी के गुरु हैं। फिर तो इतना ऊंचा क्यों जा रहे हो आप प्रभुपाद जी को समझ लो, बहुत बड़ी बात है, जंप नहीं करना चाहिए हमें, है ना। प्रभुपाद जी की किताबों को हम समझ ले बहुत बड़ी बात है। समझने का मतलब क्या है कि हम उनको उनको जीवन में उतारें। तो पहला अध्याय जो है उसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, और उसका पहला श्लोक इस तरह से है, ध्यान से सुनिए। धृतराष्ट्र उवाच, बोलिए, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। इसका अनुवाद है, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब दोहराइए, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तात्पर्य आप लोग ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद जी का तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता एक बहु पठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करे और स्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार के साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता में भी है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पद प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णायात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भलीभांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसीलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहां पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। साधु भगवत तो श्रीमद् भगवद गीता जो है ये महाभारत का ही अंश है। महाभारत जो है उसमें भीष्म पर्व में ये भगवद गीता का वर्णन आता है और इसमें रूपा जी महाभारत से ही जैसे हमें समझा रहे हैं कि कैसे धृतराष्ट्र और पांडव के पुत्र संजय ये सब महाभारत के चरित्र हैं। आप सब लोग भी जानते होंगे महाभारत के बारे में। तो धृतराष्ट्र और पांडु ये जो दोनों आपस में भाई हैं, धृतराष्ट्र जो हैं वो बड़े भाई हैं, वो पांडु जो हैं छोटे हैं। और इनके जो भाई हैं उनका नाम है विदुर। विदुर ये तीनों भाई हैं। तीनों के जो पिता हैं वो एक ही हैं, माताएं अलग अलग हैं, तो पिता से जाने जाते हैं। जो संबंध होता है भाइयों का वो पिता से जाना जाता है, है ना। तो इस तरह से इन तीनों के पिता एक ही हैं, धृतराष्ट्र के, पांडु के और विदुर जी के। और आप जैसे जानते हैं कि जो राज्य है, जो राजा का अधिकार है वो बड़े पुत्र को मिलता है। बड़ा जो पुत्र होता है उसको राजा बनने का अधिकार होता है। तो उस दृष्टि से धृतराष्ट्र जो है वो ये हस्तिनापुर का जो राज था उसका अधिकारी था वो। लेकिन क्योंकि वो जन्म से ही अंधा था, अंधा ही पैदा हुआ था वो, तो इसलिए उससे जो वो अधिकार है वो छिन गया। क्योंकि अंधा जो व्यक्ति है वो राजा कैसे बनेगा, सारे राज्य की देखभाल कैसे करेगा, जो खुद अपनी ही देखभाल नहीं कर सकता। तो इसलिए धृतराष्ट्र की जगह उनके जो छोटे भाई हैं पांडु उनको राजा बनाया गया हस्तिनापुर का। लेकिन पांडु जो है वो धृतराष्ट्र से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस कारण से इनके जो बच्चे थे पांडु के, कितने बच्चे थे पांडु के, क्या नाम थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। थैंक यू। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, उनसे छोटे थे भीम, उनसे छोटे थे अर्जुन और सबसे छोटे थे नकुल और सहदेव। नकुल सहदेव जो है ट्विन्स थे वो। तो ये पांच पुत्र छोटे थे इसलिए अभी ये राजा बनने के योग्य नहीं थे। तो इन पांचों पुत्रों को धृतराष्ट्र के संरक्षण में रखा गया और धृतराष्ट्र को तब तक राज्य का भार संभालने के लिए कहा। लेकिन जब इनको ये राज्य का भार संभालने के लिए कहा, ये राजा की तरह जब कार्य कर रहे थे तो इनको लगा कि ये तो मेरा ही अधिकार है, अगर ये मुझे नहीं मिला तो कम से कम मेरे पुत्रों को तो मिलना ही चाहिए। तो इस कारण से फिर उन्होंने तरह तरह की जो है वो नीति अपनाई, अनीति अपनाई, जिससे कि ये राज्य उनको मिल जाए। आप जानते ही हैं, महाभारत तो सबने देखी है, सारे टेलीविजन में आई, कैसे उन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रचे। और आखिर में फिर यहां तक बात पहुंच गई कि दुर्योधन ने कहा मैं तो एक सुई की नोक के बराबर भी इनको जमीन नहीं दूंगा। हालांकि इन्होंने सब शर्तें पूरी कर गई, जब ये हार गए, ये इन्होंने वनवास भी काट लिया, अज्ञातवास भी काट लिया, सब काट लिया, उसके बाद इनका हक था, इनको मिलनी चाहिए थी, इनका राज्य इनको वापस मिलना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने सब शर्तें पूरी कर ली थी। लेकिन दुर्योधन कहता है कि नहीं, युद्ध के बिना तो मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। तो फिर युद्ध जो है वो जरूरी था। तो वही स्थिति, अब वही स्थिति है जब दोनों तरफ जो है सेनाएं खड़ी हैं और धृतराष्ट्र जो है अंधे हैं, अपने राज्य में ही बैठे हैं, अपने जो उनका महल है उसमें ही बैठे हैं, और संजय जो हैं उनको ये योग्यता थी कि वहां बैठे बैठे ही उनको सब नजर आ रहा है। जैसे आपको बैठे बैठे टेलीविजन के जगह, टेलीविजन के जरिए आपको मैच नजर आया था ना, चाहे इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं पे हो, है ना, या कोई भी और खबर जो है आप टेलीविजन में देख लेते हो। लेकिन ये भी योग्यता है कि हृदय में भी आप सब देख सकते हो, ये योग्यता थी संजय में। वो हृदय में ही उसको सब नजर आ रहा था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या घटित हो रहा है। तो इसीलिए धृतराष्ट्र जो हैं, जो संजय उनको बता रहा था, उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, बताओ वहां तो क्या हुआ। और प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं कि कैसे जो है धृतराष्ट्र जो है वो ईर्ष्यावश इस तरह का ये प्रश्न पूछ रहा है। ईर्ष्यालु है धृतराष्ट्र बहुत। और प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि ये जो संसार है, जो मेटीरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार जो है, ये ईर्ष्या के ऊपर ही टिका हुआ है। भौतिक संसार में ईर्ष्या है, और ईर्ष्या को बुरा नहीं समझा जाता। बुरा समझा जाता है ईर्ष्या को? ईर्ष्या को बुरा समझा जाता नहीं भौतिक संसार में, है ना? भौतिक संसार में ईर्ष्या को बुरा नहीं समझा जाता या बुरा समझा जाता है? हैं? क्यों? आप देखिए टेलीविजन में कितनी जोर शोर से एडवर्टीजमेंट करते हैं, नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, टेलीविजन में खुलेआम ये एडवर्टीजमेंट थी। कई लोगों ने सुना हो, जो पुराने लोग जानते हैं तो सुना आपने, ये देखो जानते। ओनिडा टीवी जब आया था तो टेलीविजन में ये एडवर्टीजमेंट आती थी और लोगों ने ओनिडा खरीदा इसी कारण से। इसलिए नेबर्स एनवी ओनर्स प्राइड, इसको तो महत्ता दी जाती है। आप इफ यू आर प्राउड ऑफ समथिंग वेरी गुड, और आपके जो पड़ोसी हैं आपसे जलते हैं, वेरी गुड, ये तो हमारा पर्पज है। तो भौतिक संसार में ये चीजें हैं, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये सब भौतिक संसार में कॉमन है, ये चीजें हैं, इसी पे टिका हुआ है भौतिक संसार। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ये चीजों का बिल्कुल महत्व नहीं है। आध्यात्मिक संसार में आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते अगर आप ये चीजें साथ लेके चलोगे तो। ये बात बहुत जरूरी है समझना। कोई स्थान नहीं है ईर्ष्या का आध्यात्मिक जगत में। इसीलिए ये जो है, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे आता है, कृष्ण भावना में आगे आता है, तो लोग कहते हैं क्या हो गया इसको, वो देखो क्या है अभी, वो वैसे तो इतना बड़ा डॉक्टर है, वो किताबें बेचता फिरता है, घर घर जाके किताबें बेच रहा है ना, क्योंकि किताबें बेचना छोटा समझा जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई भी सेवा जो आप भगवान के लिए कर रहे हो वो छोटी नहीं है, कोई भी सेवा। भगवान के मंदिर में अगर आप झाड़ू लगा रहे हो, भगवान के अगर आप टॉयलेट भी साफ कर रहे हो, कोई भी सेवा कर रहे हो, कोई छोटी नहीं है। ये अंतर है। लेकिन भौतिक संसार में छोटा बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा काम है, ये छोटा काम है, ये रिक्शा वाला है, इसकी तो औकात नहीं है, रिक्शा अरे हट जा इधर, हट जा रिक्शे वाले से, तो बात आप इज्जत से करो तो आप रिक्शे वाले से बात, रिक्शे वाले से तो ऐसी बात करनी चाहिए, ये मजदूर है, हट जा इधर हट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब उसको जीने का हक ही नहीं है जैसे। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं है, आध्यात्मिक संसार में एक चींटी को भी जीने का हक है, एक चींटी में भी आत्मा है, वही आत्मा है जो एक मनुष्य में है, वो चाहे मनुष्य राजा ही हो, कोई भी हो, आत्मा सब में एक ही है, एक ही आत्मा है, और वो सब आत्माएं जो हैं वो परमात्मा का अंश है सब। ये है आध्यात्मिक जगत। इस तरह से सब के सब लोग जो हैं वो आपस में संबंधित हैं, सब संबंधित हैं। लेकिन भौतिक चेतना होने के कारण, आध्यात्मिक चेतना होने ना होने के कारण हम कितनी तरह का डिफरेंसेस देखते हैं, और जो छोटे छोटे अंतर हैं उनको मैग्निफाई किया जाता है। जैसे अमेरिका में दो लोग मिले, हाथ मिलाया और बोला आप कहां से हो, मैं भारत से हूं, ओ मैं भी भारत से हूं, मैं भारत से, वेरी गुड वेरी गुड, ओ वेरी गुड, बड़ा खुश हो गए भारत से। तो अमेरिका में कहां कहां से लोग आते हैं, कोई बहुत देशों, अमेरिका में लगभग सभी देशों के लोग मिलेंगे आपको, इतना बड़ा दुनिया, उनमें से भारतीय मिल गया, ओ वेरी गुड, अच्छा भारत के कौन से हिस्से से आप संबंध रखते हैं, ओ मैं तो साउथ इंडिया से हूं, अच्छा मैं भी साउथ इंडिया से, ओ वेरी गुड वेरी गुड, ओ तुम तो दोस्त भाई बता, अच्छा साउथ इंडिया से, क्या कास्ट है आपकी, मैं अयंगर हूं, अयंगर, ओ मैं भी अयंगर हूं, ओ वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे हाथ मिला रहे हैं, जब वेरी गुड वेरी गुड, बड़े खुश हो रहे हैं कि अपना व्यक्ति मिल गया, अपना ही साउथ इंडियन का, अपनी जात का मिल गया। अब साउथ इंडियन कोई है यहां पे जो जानते, आप जानते हैं अयंगर, अयंगर में भी दो आगे होती है ना, अयंगर में दो, हाँ तो जो भी है, मैं साउथ इंडियन नहीं हूं, लेकिन मुझे जिन्होंने सुनाया वो साउथ इंडियन थे, दो होते हैं ना, हाँ यस यस। तो उसने कहा कि एक तो अयंगर है और एक अय्यर है, तो फिर उन्होंने कहा नो 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 नो, तो दूर हो गए, फिर तो आप अय्यर हो, आप ऐसे लगाते हो, हम ऐसे लगाते नहीं, फिर दुश्मन हो गए वो, आप समझ रहे हैं, कितनी सारी आपस में सम्मानता कॉमन कॉमन है, सम्मानताएं हैं, वो नजरअंदाज हो गई जब ये डिफरेंस आया कि आप अय्यर हो मैं अयंगर हूं। इसी तरह से ये भौतिक संसार है, सारे हम लोग सम्मान एक बराबर है, कॉमन है, क्या कॉमन है, सब हम आत्माएं हैं सब, लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं हम तो मनुष्य हैं, ये जानवर है, ये वृक्ष है, ये तो अलग हो ही गया, फिर हम मनुष्यों में भी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम अमीर हैं, हम गोरे हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, कितने कितने हम जो हैं डिफरेंसेस बना लेते हैं। यही है भौतिक संसार। और आध्यात्मिक संसार में क्या है, एक भगवान है और बाकी सब उनके उनके सेवक हैं। एकला ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है भगवान का दास। ये है आध्यात्मिक जीवन, ये हमें जो है भगवद गीता सिखाती है। और यहां पे यही हमें समझना है कि देखो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि शुरू से ही पता लग रहा है कि जैसे धान में खरपतवार होते हैं, जैसे उसको उखाड़ दिया जाता है, इसी तरह से ये धृतराष्ट्र को और उसके पुत्रों को उखाड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध है और ये धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है। तो इसीलिए हमें ये जो चीजें हैं इनको हमें हटाना है। खास तौर से जो ईर्ष्या है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा। और ईर्ष्या को खत्म करने का तरीका यही है कि हम भगवान के प्रति ज्यादा से ज्यादा समर्पित हों, क्योंकि ये ईर्ष्या जो है भगवान तक जाती है सीधी। और इसी कारण से यही कॉज है हमारा भौतिक संसार में गिरने का, कि हम असल में भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं, भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। हम भगवान बनना चाहते हैं। ईर्ष्या का मतलब क्या है कि जो उसका राइटफुल ऑनर है, जैसे ये राइटफुल ऑनर थे, ये जो पांडु हैं, ये तो इन्हीं का तो राइट था, इन्हीं की तो ये तो उत्तराधिकारी थे, इन्हीं की थी ये हस्तिनापुर, लेकिन उनको उनसे छीना जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उनको कह रहा नहीं नहीं तुम्हारा नहीं है। इसी तरह से भगवान जो एकला ईश्वर कृष्णा, जो कृष्ण भगवान का एक यूनिक स्थान है, कोई भगवान नहीं बन सकता, लेकिन हम कहते हैं नहीं वो भगवान नहीं है, हम भगवान है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि ये भगवद गीता का संस्करण ही ऑथेंटिक है, इसमें यथा रूप। नहीं तो लोगों ने भगवान को हटा के अपना मत जो है प्रकट किया है, उनको कृष्ण को हटा दिया और कृष्ण के नाम पे अपना मत प्रकट कर रहे हैं। जैसे दूसरे के कंधे पे आप बंदूक रख के चलाओ, बंदूक आप चला रहे हो, कंधा उसका इस्तेमाल कर रहे हो। इसी तरह से कृष्ण की अथॉरिटी को, कृष्ण के नाम को यूज करके लोग अपना मत भगवद गीता के जरिए आगे बढ़ा देते हैं। ये जो है ये हो रहा है, इसीलिए ये भगवद गीता ऑथेंटिक है। और इसी भगवद गीता को ध्यान से पढ़िए आप, और इसी भगवद गीता का प्रचार करिए, आप लोगों को बताइए। ऐसा नहीं कि सब भगवद गीता है जी, हमारे पास भी है जी भगवद गीता है हमारा, पूछो कौन सी भगवद गीता है आपके पास, और उनको बताइए कि ये असली भगवद गीता है। और असली भगवद गीता आप पढ़ोगे तो आपको परिणाम मिलेगा। भगवद गीता पढ़ने का क्या परिणाम है, क्या होता है भगवद गीता पढ़ने से? तो भूमिका के आखिर में महात्म्य लिखा हुआ है। पहला महात्म्य क्या है, सारांश यह है कि भगवद गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। नॉवल की तरह नहीं, मैगजीन की तरह नहीं, अखबार की तरह नहीं। गीता शास्त्रम इदम पुण्य य पठेत प्रयतः पुमान, यदि कोई भगवद गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। मुक्त, कभी भी किसी दिन भी किसी क्षण भी आपको चिंता और दुख सताएंगे नहीं। यह है भगवद गीता पढ़ने का परिणाम। हर समय 24 घंटे 30 दिन 365 दिन और पूरी उम्र भर आप मुक्त रहोगे, मुक्त हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि चिंताएं कम हो जाएंगी, दुख कम हो जाएंगे, नहीं, ये नहीं कहा। ये कहा कि वह जीवन के दुखों तथा चिंताओं से मुक्त हो सकता है। आपका जीवन जो है, आपका चेहरा 24 घंटे ऐसे कमल की तरह खिला रहेगा, हमेशा दुख और चिंता के कोई लक्षण नहीं रहेंगे, अगर आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं और इनके उपदेशों का पालन करते हैं। और क्या होगा, भय शोक आदि वर्जिता, वह इस जीवन में सारे भय से मुक्त हो जाएगा और उसका अगला जीवन आध्यात्मिक होगा, भय नहीं लगेगा किसी तरह से भी, कभी भी भय नहीं लगेगा आपको किसी भी सिचुएशन में, किसी भी जगह पे। तो लोग तो बहुत डरते हैं, आम व्यक्ति तो कितना डरा डरा रहता है, तो इसलिए जो भगवद गीता का ये ग्रंथ है, ये अगर असली ग्रंथ है तो वो अपना परिणाम दिखाएगा। असली दवाई खाओगे आप तो उसका परिणाम उस जो जिसके लिए है वो काम करेगी। तो यही भगवद गीता इसलिए है, लोग सालों सालों से हम देखते हैं भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो उसका कोई असर ही नहीं हो रहा, वैसे के वैसे ही भय, वैसे के वैसे चिंता, वैसे के वैसे दुख। नहीं, इसका मतलब है या तो आप भगवद गीता जो है वो यथारूप एज इट इज नहीं पढ़ रहे, और या उसके उपदेशों का आप पालन नहीं कर रहे। तो इसीलिए जरूरी है कि जब हम भगवद गीता पढ़ें तो उसको डिस्कशन हो, ये ऐसा होना चाहिए। आप सब लोग जो हैं, आप चाहो आप सीरियस हो, आप चाहो तो इस भगवद गीता को समझ सकते हो, समझ रहे हो, वेरी गुड। लेकिन साथ में आप जाकर लोगों को बताइए, क्योंकि बताने से आपकी समझ पक्की होगी। आप किसी को समझा नहीं सकते जब आप खुद ही नहीं समझे, है कि नहीं? तो इसीलिए आपको दूसरों के साथ बात करनी चाहिए, जो आप पढ़ो जो सुनो वो दूसरों को बताओ जाके, यही प्रचार है। जब आप दूसरों को बताओगे तो कोई क्वेश्चन पूछेंगे, कुछ बातें पूछेंगे, हो सकता है कि वो आप उसका आंसर नहीं दे सको, तो आपको फिर दोबारा भगवद गीता को देखना पड़ेगा या दोबारा आपको पूछना पड़ेगा, प्रभु जी ये तो इसका क्या, ऐसे कैसे उन्होंने तो ये पूछ लिया हमारे से। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आप फिर देखेंगे कि आप प्रगति कर रहे हैं। तो ये मनुष्य शरीर जो हमें मिला है ये आध्यात्मिक जीवन के लिए ही मिला है, मनुष्य जीवन हमें भोग भोगने के लिए नहीं मिला। इसलिए आप बहुत भाग्यशाली हो, बहुत सौभाग्यशाली हो कि मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसको समझ रहे हो। तो जो ये पहला अध्याय है इसमें लगभग महाभारत का ही वर्णन है, इसमें महाभारत से ही सब चीजें आएंगी। तो पहले श्लोक में जैसे मैंने बताया कि दोनों भाई हैं, देखो आपस में भाई तो हैं दोनों, जो चाचा और ताए भतीजे ये तो हुए, उसके उसके भतीजे तो है धृतराष्ट्र के, लेकिन ईर्ष्या के कारण जो है वो अपने भतीजों को भी जो है वो मारना चाहता है, ये है ईर्ष्या का ये अंजाम होता है। तो यहीं पे हम विराम देते हैं, आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए आप। हाँ बोलिए, शाबाश। उस तरह से अगर हम देखें तो ध्यान से अगर गहराई से देखें तो भौतिक संसार में भौतिक सुख और दुख जो है ना वो असल में दुख ही है। भौतिक सुख और दुख ये भलेखा है, भौतिक सुख कुछ है ही नहीं है, ये लगता है आपको, आपको भ्रम के कारण कुछ सुख है, भौतिकता में कुछ सुख है ही नहीं। है ना, जैसे मान लो आपको लग रहा है कि हाँ अभी सर्दियां हैं, हम गर्म पानी से नहाते हैं, गीजर हमने ले लिया, ओहो बहुत अच्छा है, वो सुख आ रहा है, वो सुख है, ये तो है सुख, और क्या है। भौतिक संसार में सुख किसे कहते हैं? इंद्रिय तृप्ति। सबसे सबसे मोटा स्थूल तौर पे जब इंद्रिय तृप्ति होती है आपको सुख नजर आता है ना। आपको भूख लगती है, खाना मिल जाए अच्छा, तो सुख है, ये तो सुख है, ये तो सुख है ना, कि भूख पेट भर जाए, जी अच्छा पेट भर जाए, और सुख है। इसीलिए तो लगे हुए हैं भौतिक मतलब संसार में सुख किसे कहते हैं? ईटिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, स्लीपिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये अगर अच्छी तरह से होता है तो इसी को सुख मान लिया जाता है। लेकिन ये सुख कहाँ है? ये सुख कहाँ है? ये क्योंकि थोड़ी सी देर में दुख में प्रकट हो जाएगा। जो आपको गर्म पानी आज अच्छा लग रहा है, जैसे ही सीजन चेंज होएगा, जैसे ही सर्दी थोड़ी सी खत्म होएगी, तो वो आपको अब गर्म लगेगा, वो आपको कष्ट देगा, वही पानी, वही गीजर अब कष्ट का कारण बन जाएगा। जैसे गर्मियों में होता है आपका जो टैंकी का पानी है वो गर्म हो जाता है दोपहर को, आप शाम को नहा सकते हो उससे। सर्दियों में वो पानी इतना अच्छा लग रहा है, वही पानी जो है अब दुख का कारण हो गया। इसी तरह से हर चीज है। आज जो चीज आपको सुख दे रही है वो थोड़े ही समय में वही दुख का कारण बन जाएगी। तो भौतिक संसार में सुख है ही नहीं। भौतिक संसार में जो सुख ढूंढ रहा है वो अज्ञानी है, वो मूर्ख है। वो जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये सुनी है कथा आपने? हाँ बताओ, किसने सुनी है बताओ? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कहावत है, लेकिन ये एक कथा के ऊपर आधारित है। किसको आती है ये कथा? सुनिए, एक बंदर जो है वो अदरक के खेत में घुस गया और एक पौधा उखाड़ा, पौधा उखाड़ा, वो खाया उसने, वो कड़वा था, तो उसने सोचा कि कच्चा है शायद, ये अदरक कचरा है या खराब है। उसने दूसरा पौधा उखाड़ा, वो भी कड़वा था, तीसरा उखाड़ा, चौथा उखाड़ा, वो सारा खेत ही उसने उखाड़ दिया। वो क्या ढूंढ रहा है बंदर? वेरी गुड, वो मीठा अदरक ढूंढ रहा है। इसलिए कहावत बन गई, ओ बंदर तू अदरक का स्वाद नहीं जानता। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ओ मूर्ख, अदरक कड़वी होती है, मीठी अदरक नहीं है, है ही नहीं संसार में। अदरक का स्वभाव ही कड़वा है, ऐसे ही खाते हैं इसको, इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं इसमें। अदरक को खाओगे सर्दियों में सर्दी नहीं लगेगी आपको, एक कड़वी होती है, मीठी अदरक नहीं मिलेगी आपको। चीनी डाल के ये वो करके मीठी बनाने का प्रयास करते हैं लोग भी। तो इसलिए ये संसार में सुख नहीं है। ये बात हमें समझ में आएगी जब हम भगवद गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इसके उपदेशों का पालन करेंगे। इस संसार में कहां है सुख? है ही नहीं। निगेशन ऑफ निगेशन, दुख का खत्म होना हम सुख समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, वो काला पानी में लेके जाते थे ना पहले जमाने में लोग, जब किसी को काला पानी की सजा हो जाती थी उसको लेके जाते थे टापू में दूर। तो जब लेके जा रहे होते थे ना उसको, क्या करते थे, उसका ऐसे बाल पकड़ के ना उसको और कष्ट देने के लिए, टॉर्चर करने के लिए उस कैदी को, उसको पानी में डुबो देते थे पूरा। अब पानी में डुबोएगा तो सांस कैसे लेगा वो बेचारा? सांस रोके रखता था, रोके रख, सांस लेगा तो मरेगा वो। तो जैसे ही वो मरने लगता था ना, तो उसका जो है ना सिर बाहर निकालते थे, ऐसे करता था वो। अब देखो कभी सांस रोक के देखो, कभी पानी के अंदर जाओ और कोई जबरदस्ती, तो कैसे आ, तो उसको लगता था आय आय कितना सुख मिल गया, ओए 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 सांस आ गई मुझे, सुख मिल गया। यही हम लोगों का हाल है, बिल्कुल कष्ट ही कष्ट, कष्ट ही कष्ट, हर तरह के कष्ट। पेट में भूख लग गई, अब गर्मी आ गई, अब सर्दी आ गई, अब उसने सताया, उसने सताया, कष्ट ही कष्ट है। जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, मोटे मोटे कष्ट हैं। फिर दूसरे जीव सताते हैं, क्या करोगे, मक्खी हैं, मच्छर हैं, जीव सता रहे हैं। आपको नींद आ रही है और ढोल बजा रहा है, वो शादी है उसकी, अब कर लो, शराब उसने पी हुई है, अब मना कर लो क्या करोगे, कर लो जो करना है कि नहीं। शराब पी के जो ढोल बजा रहा है वो सुनेगा क्या आपकी? आपको नींद आ रही है, आपने सुबह जाना है कहीं काम से या कोई एग्जाम देना है, कुछ करना है, चार पांच घंटे मुश्किल से आप सोना चाहते हो, वो भी नहीं मिल रहा, कर लो। कहां है सुख, कहां है इस संसार में? धोखा है। जो कह रहे हैं हम सुखी हैं, जो सोच रहे हैं सुख की तलाश में, वो बंदर हैं। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मिराज के पीछे घूम रहे हैं। जैसे मिराज मरुस्थल में कोई समझे कि वो देखो सुख, वो देखो पानी, वो मैं पकड़ लूंगा पानी, वो मिल गया मुझे पानी, बस मेरी प्यास बुझ जाएगी। समझते हैं मिराज, समझते हैं मृग तृष्णा, वो जाएगा वहां पे, पानी तो है ही नहीं। ओ नहीं नहीं वो पानी वहां रहा है, वहां रहा, वो थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया, मैं सोचा था 4 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर होगा, और मैं भागता हूं, चलो पानी है ही नहीं। इसलिए कहा मृग तृष्णा, पशु कम बुद्धि के होते हैं, बेचारे मरुस्थल में भागते रहते हैं और मर जाते हैं प्यासे। आदमी ऐसा नहीं करता, आदमी जाता ही नहीं उसके पीछे, वो कहता है ये भैया पानी नहीं है, ओए वो पानी नहीं है, लिशकारा है, लिशकारा है, मिराज है, मिराज, इसको मिराज कहते हैं, मत जा। तो सुख नहीं है इस संसार में, ये धोखा है, सुख कहां है? तो कर्म तो कैसे भी हो, आप जब भक्ति में लगते हो आप सुखी हो जाते हो। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति है, बेचारे के हाथ में शादी की रेखा ही नहीं है, शादी, कई लोग होते हैं वो बेचारा, बेचारे की शादी नहीं हो रही, 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, शादी नहीं हुई इसकी। भौतिक संसार में बेचारा कहेंगे उसको, नहीं कवारा ही रह गया, शादी नहीं हुई इसकी। अब वही व्यक्ति उसी अपने कर्मों से आध्यात्मिक संसार में आ जाता है, भक्त बन जाता है, ब्रह्मचारी बन जाता है। अब ब्रह्मचारी बन जाता है, अब शादी तो है ही नहीं उसके हाथ में, लड़की कोई पास ही नहीं आती, वो तो वैसी लड़की से भी दूर रहता है, वो ब्रह्मचारी बन गया। अब 40 साल की उम्र में आया, 45 साल की उम्र में आया, तो संन्यास ले लिया उसने, दंड हाथ हाथ में, महाराज महाराज की जय हो, जय हो हिज होलीनेस, जो भी नाम है, हिज होलीनेस महामंत्र महाराज की जय, जो भी नाम रख लो। उदाहरण दिया, उसकी किस्मत में थी ही नहीं पत्नी, उसी के कारण उसको हा वाह वाह मिल रही है। आप समझ गए, ये है आध्यात्मिक होना। वो कर्मों का कोई, जब आप भगवान की सेवा में जुड़ गए तो भगवान के साथ जुड़ने में कुछ भी आपके पास है वो अच्छा ही अच्छा है। दूसरा उदाहरण लीजिए, देखिए एक व्यक्ति है, उसके हाथ में पैसा ही नहीं है, पैसा आएगा ही नहीं, गरीब। अब बताओ भौतिक संसार में कोई गरीब व्यक्ति की औकात है जिसके पास पैसा नहीं हो? कोई पूछता है उसको? रिश्तेदार भी कहते हैं भैया उसको बुलाओ ही मत, शादी में कुछ देना तो है नहीं उसने, 11 रुपए का, इतना कंजूस है 11 रुपए का सगन नहीं डालना उसने, कार्ड देने का फायदा क्या है ना? कोई नहीं पूछता जिसके पास पैसा नहीं है। अब वही बंदा भक्ति में आ जाता है, अब देखो वो बंदा भक्ति में आ गया, भक्त बन गया, अब उसको कहते हुए इतना विरक्त, इतना वैरागी महात्मा, दो धोती दो कुर्ता है उसके पास, बस क्या उसकी तारीफ होगी, क्या वैरागी, क्या वैराग है, वैराग हो तो वो ब्रह्मचारी जैसा कुछ भी नाम हो, मतलब एक्स वाई जेड सब तारीफ करेंगे ना उसकी। आपको कोई भक्त नजर आए जो बिल्कुल सिंपल है, दो धोती दो कुर्ता एक कटोरा, कुछ नहीं है उसके पास पोजेशन, आप खुश होते हो नहीं देख के उसको, तो कितना बैराग है इसमें, है ना? वो बैराग क्या, किस्मत में है नहीं उसका पैसा, यहां तारीफ हो रही है उसकी। आप समझिए, तो ये भौतिक संसार में दुख ही दुख है, सुख भी दुख है, धोखा है जिसे आप सुख समझ रहे हो वो भी दुख है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में जो दुख आपको नजर आता है वो भी सुख है, वो भी सुख है। इसीलिए जब आप भगवद गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ते हो और उनके उपदेशों का पालन करते हो तो दुखों और चिंताओं से मुक्त हो जाओगे, ये सच बात है, ये आपको रियलाइज होगा, ये रियलाइज नॉलेज है, ये आप इस स्थिति में आ जाओगे कि आप भौतिक संसार से ऊपर उठ जाओगे। भौतिक संसार तो जेल है, जेल में अगर कोई सुखी रहता है तो मूर्ख है, वो पागल है, पक्का कैदी है, हार्ड कोर क्रिमिनल है, उसका क्या करोगे। लेकिन बाहर जेल के कोई भूखा भी रहता है, भिखारी भी है, वो भी सुखी है। तो आध्यात्मिक जीवन को अपनाने का मतलब है जेल से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हो, और जब आप सिद्ध हो जाओगे तो जेल से बाहर हो गया, तो फिर कैसे आप, फिर कोई जेल से बाहर हरेक कोई रहना चाहता है कि नहीं। थोड़ा किसी को कहे जी ये लो जी 1 करोड़ रुपया तुम्हें देते हैं, चलो जेल में बंद हो जाओ, कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं करेगा ये। तो ये जेल है, भौतिक संसार जेल है, इसको हमें ये समझना है। कष्ट है इसमें, हमारी आत्मा फंस गई है इसमें। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा प्रश्न पूछिए। हैं वेरी गुड, बहुत अच्छा। इनका प्रश्न है कि कैसे अवांछित जो भावनाएं हैं मन से वो कैसे निकालें, है ना, जैसे पौधे हैं वो निकालते हैं, बहुत अच्छा। तो जैसे भगवान यहां पे भगवान है इसलिए अवांछित चीजों को वो निकाल देंगे, उसी तरह से जब हम भगवान को अपने हृदय में डालेंगे तो अवांछित चीजें अपने आप निकल जाएंगी। कृष्ण सूर्य समा माया है अंधकार, जहां कृष्ण ताहर नहीं माया अधिकार। जहां कृष्ण है वहां पे माया नहीं रह सकती, तो इसलिए कृष्ण को हम हृदय में डालें। कृष्ण को हृदय में डालने का सबसे आसान सबसे सरल तरीका इस कलयुग में है ये भगवान के पवित्र नामों का ध्यान पूर्वक हम जप करें। जब ये कानों के जरिए हृदय में जाएगा अपने आप अवांछित चीजें निकलेंगी, अपने आप देखेंगे आप। कलयुग में यही सबसे अच्छा तरीका है। हरे रे नाम, हरे रे नाम, हरे रे नाम एव केवलम कलयो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम एव केवलम। भगवान के पवित्र नामों का जप ध्यान पूर्वक करिए और देखिए कैसे जो सारी अवांछित चीजें जो है निकल जाएंगे। ठीक है, आसान तरीका है। और किसी का प्रश्न? क्या शुभ नाम है आपका? दीप्ति। दीप्ति मतलब वो मशाल रोशनी है, दीप्ति रोशनी दिखाना चाहती है सबको। बहुत अच्छा। तो दीप्ति एक बात को हमें समझना है, जो जो जिससे शुरू होती है भगवद गीता ABC जो है वो ये है कि हम आत्मा हैं, है ना। तो जो भी आप जिनकी भी चर्चा कर रहे हैं वो अपनी पिछले कर्म साथ लेके आए हुए हैं, ठीक है ना। तो पिछले कर्मों के कारण वो इस स्थिति में है। और आप भक्ति किसी को भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है। आप जैसे कोई मान लो कह रहे हैं जैसे बच्चे हैं जिनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो इसी कारण से हम लोगों ने ये फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम शुरू किया है। जब आप भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में किसी को दोगे तो उसका पेट भी भरेगा और उसकी चेतना का भी विकास होगा। क्योंकि अगर चेतना का विकास नहीं होता तो कोई भी भक्ति ऐसा नहीं है। आप देखो जिनके पेट भरे हुए हैं वो भक्ति कर रहे हैं क्या? फिर जिनके पास बहुत पैसा है, अब उल्टा देखिए आप कह रहे हैं कि बेचारे वो कैसे भक्ति करेंगे, लेकिन जिनका पेट पूरा भरा हुआ है वो भी कहां भक्ति कर पाते हैं। उनको उसके बाद शराब चाहिए, उनके बाद मीट चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए भक्ति जो है किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। भगवान से भक्ति करने के लिए आपको कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जैसे बच्चों को अपने माता पिता से प्यार करने के लिए क्या चाहिए, कुछ खास चीजें चाहिए क्या? इसलिए भगवान कह रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कह रहे हैं मुझे कोई पत्ता भी दे देता है एक, मैं भक्ति उपरतम अश्नामी प्रियतात्मना, मैं उसको स्वीकार करता हूं, वो भक्ति है, भगवान उसको अपना बना लेते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए हमें, ऐसा ऐसा लगता है भक्ति, कितने जो हमारे बड़े बड़े भक्त हुए हैं वो बहुत ही गरीब थे, वो हमारे श्री कोला वेचा श्रीधर हुए हैं, वो 3 पैसे कमाते थे रोज, 3 पैसे की इनकम थी, वो केले के पत्ते बेचते थे, केले बेचते थे, केले के पत्ते बेचते थे, लेकिन 3 पैसे में से 1.5 पैसा जो है वो गंगा जी की सेवा में रोज लगाते थे। तो आप जब देखो तो आप उसको किसी न किसी रूप में कृष्णा कॉन्शियसनेस देने का प्रयास करो। जैसे अगर कोई भूखा है तो उसको प्रसाद के रूप में दो, और कोई विद्वान है, जिज्ञासु है, जो आपसे फिलॉसफी समझ सकता है तो उसको फिलॉसफी के रूप में दो। लेकिन हमें ये बात से क्लियर होना चाहिए कि जब तक हम कृष्णा कॉन्शियसनेस उस जीव को नहीं देंगे वो सुखी नहीं होएगा। जैसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे मछली है, मछली को आप 1,00,000 सुविधाएं दे दो, मछली को आप एक सोने की तश्तरी में रखो, उसको रेशम के सिल्क के कपड़े पहनाओ, उसके आगे रखो काजू पिस्ता बादाम सारा तरह तरह के पकवान बढ़िया बढ़िया, और 2-3 नौकर उसकी हर समय उसकी जो है सेवा कर रहे हैं, कोई चामर डुला रहा है उसको, कोई उसके हाथ आगे जोड़ के खड़ा है मछली के आगे, सब सुविधाएं, वो तड़फेगी कि नहीं तड़फेगी पानी के बिना? इसी तरह से आपको कितनी भी सुविधाएं मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, करोड़पति बन जाओ आप, ये सच बात है बिल्कुल, आप उस मछली की तरह तड़फते रहोगे अगर आपको आध्यात्मिक वातावरण नहीं मिलेगा। हमें आध्यात्मिक वातावरण चाहिए पनपने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, नहीं तो हम तड़फते रहेंगे, और तड़फ रहे हैं लोग, देखिए आज समाज में हाहाकार मचा हुआ है, समाज में लोग तड़फ रहे हैं। इसी कारण से तो आप केमिस्ट के पास जाओ तो उससे पूछो, हे केमिस्ट जी आप जरा बताइए आपकी सबसे ज्यादा दवाई कौन सी बिकती है? वो कहेगा स्लीपिंग पिल्स, ट्रैंकुलाइजर्स बहुत बिकते हैं प्रभु जी, ट्रैंकुलाइजर्स, स्लीपिंग पिल्स, किसको जरूरत है? तनाव को दूर करने के लिए, टेंशन को दूर करने के लिए, नींद नहीं आती रात को, रात को लेट गए बेड जो है 1,00,000 रुपए का ले आए, इतना बढ़िया है कि जहां कोई भी थोड़ा सा हार्ड पार्ट बॉडी का पड़ता है तो धस ही जाता है अंदर, इतना मुलायम बेड है, नींद आ ही नहीं रही, वो नींद नहीं आ रही। 1 घंटा 2 घंटा एक मुझे कोई व्यक्ति मिला, कहता है मैं तो क्या करता हूं सामने घड़ी लगी हुई है, सारी रात घड़ी को ही देखता रहता हूं, वो कब बजे 3 तो मैं उठू, नींद नहीं आती, बताओ, बेड 1,00,000 रुपए का लेके आ गए। ये हाहाकार मचा हुआ है समाज में, आप सब चाहो तो उनको बचा सकते हो, सबको बचा सकते हो, सब एक एक व्यक्ति आप में से बहुत योग्य है, आप चाहो इसको समझो और मन में करुणा लाओ और सोचो कि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी आत्माएं हैं, वो भी उसी परमात्मा के अंश हैं जिसके हम अंश हैं, वो हमारे भाई हैं, तड़फ रहे हैं, उनको हमें बचाना है। कैसे बचाना है? कृष्णा कॉन्शियसनेस देके, कृष्ण भावना अमृत के बिना कोई कंबल दान करो, ये करो, वो करो, वो इसी तरह से है जैसे मछली को पानी में नहीं डाल रहे, दुनिया भर की सुविधाएं दे रहे हो, वो तड़फेगी, वो तड़फता ही रहेगा, आपके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ना किसी रूप में उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस देने का प्रयास करो, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान कैसे इसको कृष्णा कॉन्शियसनेस दूं मैं, कैसे दूं, कैसे दूं? भगवान ददामी बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि देंगे आपको, क्योंकि भगवान चाह रहे हैं, आप भगवान का कार्य कर रहे हो, भगवान चाहते हैं ये जीव मेरे पास वापिस आए, जितना हम आतुर हैं भगवान से मिलने के लिए, उससे कई गुना ज्यादा भगवान आतुर हैं हमारे से मिलने के लिए। जैसे माता पिता ज्यादा आतुर होते हैं बच्चे की देखभाल के लिए, देखा ना, ये देखो माता को देखो, ये है, ऐसे ही हमारे भगवान है। अभी बच्चा पैदा भी नहीं होता और चिंता हो जाती है माता पिता को, कहां इनका एडमिशन कराएं, बड़ी दिक्कत हो रही है एडमिशन की, वहां के फॉर्म ले आते हैं पहले ही, 3 साल बाद 2 साल बाद अभी बच्चे को एडमिशन कराना है, पहले ही चिंता हो गई है उनको। ऐसे ही भगवान को चिंता है हमारी बहुत, इसीलिए तो भगवत गीता दी है, इसीलिए तो प्रभुपाद जी जैसे संतों को भेजते हैं, भगवान ने ही अरेंजमेंट किया हुआ है, योजना बनाई हुई है। तो इसीलिए उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हमें भी कंपैशनेट होना है, हमें भी दयावान होना है। और दया का ये भी मतलब है कि हम टाइम के भी पाबंद हों, है ना, कई लोगों को घर जाना है, फिर साथ लेना, ये भी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने सुना, कोऑपरेट किया, बच्चों को भी आपने संभाला, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा। सबसे पहले हम हिज ग्रेस किशोर प्रिय प्रभु का हार्दिक धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों का मार्गदर्शन किया और बताया कि किस तरह से हम लोग भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हमारी परंपरा है कि हम लोग 3 बार हरी बोल बोल करके प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं। हरी बोल,
हरे कृष्ण,
हरी बोल,
हरे कृष्ण,
हरी बोल,
हरे कृष्ण।
और आज कुछ जरूरी सूचनाएं हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग अनाउंस करेंगे बर्थडे। तो हमारे डिवोटीज में ही 2 बच्चों के बर्थडे है, सबसे पहले है गरिमा। तो गरिमा माता जी हो तो उस कृपा स्टेज पे आ जाए, आज गरिमा माता जी का बर्थडे है, वो 9 साल की हो चुकी है।